ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 2 टेक्स्ट 35 सोहं तथा यतेष्यामि याता चिचेन्द्रियानिला याता ना भूया आत्मनाम अंधे तमसी माजये सोहम तथा यतेष्यामि यथा चितेन्द्रियनिलीला यथा न भूय आत्मानाम् अन्ये तमसि मजये सोहम तथा यतेष्यामि यथा चितेन्द्रियनिलीला यथा न भूय आत्मानम् अन्ये तमसि माजये सोहम तथा यतेष्यामि यथा चितेन्द्रियनिलीला यथा न भूय आत्मानम् अन्ये तमसि माजये
सोहम तथा यतेष्यामि यच्चितेन्द्रियानिलः यथा न भूय आत्मानम् अन्धे तमसि मज्जये सोहम तथा यतेष्यामि यच्चितेन्द्रियानिलः यथा न भूय आत्मानम् अन्धे तमसि मज्जये सोहम तथा यतेष्यामि यच्चितेन्द्रियानिलः यथा न भूय आत्मानम् अन्धे तमसि मज्जये सोहम तथा यतेष्यामि यच्चितेन्द्रियानिलः यथा न भूय आत्मानम् अन्धे तमसि मज्जये
माताजी
थान भूय आत्मानम् तमसि मज्जये
और कोई शब्द
सह ऐसा व्यक्ति अहम मैं तथा इस तरह से अतिश्यामि मैं प्रयत्न करूंगा यच्चितेन्द्रिया मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करूंगा अनिला तथा आंतरिक वायु यथा जिससे ना नहीं भूया पुनः आत्मानम् मेरी आत्मा अंधे अंधकार में तमसे अज्ञान में मज्जये मैं डूब रहा हूँ। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूँ किंतु अब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है, अतः मैं अपने मन जीवन तथा इंद्रियों को पूरी तरह से भस्म में करके भक्ति में अपने को लगाऊंगा जिससे मैं पुनः गहन अंधकार तथा भौतिक जीवन के अज्ञान में न गिरूं। दोहराइए, मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूँ किंतु अब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है, अतः मैं अपने मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करके भक्ति में अपने को लगाऊंगा जिससे मैं पुनः गहन अंधकार तथा भौतिक जीवन के अज्ञान में न गिरूं। तात्पर्य, हम में से हर एक में यही संकल्प होना चाहिए हम कृष्ण तथा गुरु की कृपा से सूच पद तक ऊपर उठे हैं, और यदि हम यह स्मरण रखें कि यह महान अवसर है और कृष्ण से प्रार्थना करें कि हम पुनः नीचे न गिरें तो हमारे जीवन सफल हो जाए।
ओम ज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजनाशलाकय चक्षुर्मीलितानेन तमसि श्रीचैतन्य मनोविस्तम् आभितामेन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वाहम्। श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन्मयि श्रीरूपां सगजतां सहगना रघुनाथान्वितं तं सदैवं सद्वैतं सवधूतं वैजना साहित्यं कृष्ण श्रीराधा कृष्णप्रधान। हे कृष्ण करुणा तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदा शिवाय। हरे कृष्ण सोहम तथा यतेष्यामी यदा चितेन्द्रियनील यदा न भूय आत्मनम अंधेतमसी मजये। तो इस महत्वपूर्ण श्लोक का उच्चारण आज मिल कर रहे हैं। आप पिछले दो अध्यायों में आज मिल की कथा पढ़ रहे हो। इस कथा का बड़ा गहरा संदेश है। संदेश यह है कि भगवान के नाम ज्ञान से अज्ञान से जो भी लेगा इसका लाभ उठाएगा। भगवतम में उदाहरण दिया जाता है जैसे अग्नि घास को जलाकर राख बना देती है, इसी प्रकार भगवान के नाम लेने से हमारे जो पाप हैं मिट जाते हैं। तो ज्ञान से अज्ञान से आजमिल का जन्म तो हुआ था ब्राह्मण खान कुल में, पर वैश्य की संगत में आकर उसका ब्राह्मणिकल संस्कृति नष्ट हो गई। वो हर प्रकार के पाप के काम में जुड़ गया। आजमिल के पिता के पास संपत्ति थी, उनकी खूबसूरत ब्राह्मण खानदान की पत्नी थी, पर वैश्य की संगत में आकर जो धन था पिता का उसका भी उसने दुरुपयोग किया वैश्य को खुश संतोष रखने के लिए, और अपनी पत्नी को भी त्याग कर वैश्य के साथ रहने लगा। तो संगत का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए शास्त्र में कहा गया है साधु संगत सर्वशास्त्र काया, और सत्संग त्याग है वैष्णवाचार, उनकी संगत त्याग हो जिनकी भगवान से कोई संबंध नहीं हो और जिनकी केवल इंद्रिय तृप्ति में रुचि हो। भौतिक भौतिक की संगत घटाओ। आप कहोगे तो ये तो संभव नहीं है कि आप उनकी संगत बिल्कुल नहीं रखो, क्योंकि चाहे आप दफ्तर जाते हो या पढ़ाई करने जाते हो या बाजार में जाते हो या प्रचार के लिए भी जब जाते हो, आपको भौतिकवादियों की संगत तो प्राप्त करना ही पड़ता है। पर उनकी संगत उतना ही ग्रहण करो जितना कि आवश्यक है, और जितना हो सके भक्तों की संगत में रहो। भक्तों की संगत में रहोगे तो आध्यात्मिक उत्साह रहेगा, और आप सुनते रहोगे भक्ति के महत्व के विषय में। तो विष्णु दूतों की कृपा से आज हमें समझ पाए कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी वैदिक संस्कृति को त्यागा और बुरी संगत में गिर गए। अब विष्णु दूतों की कृपा से वो होश में आ गए हैं, जैसे आप कहते हो, वो माया के प्रभाव से बच गए हैं। इसलिए कहते हैं साधु संगत में रहो, क्योंकि साधु संगत में रहने से अज्ञानता दूर होती है। तो यहां आज के श्लोक में आजमल क्या कह रहे हैं, कल के श्लोक परसों के श्लोक में आजमल ने स्वीकार किया है कि मैं एक बेशरम पापी व्यक्ति था जिसने अपनी ब्राह्मणिकल संस्कृति की हत्या की। मैंने अनेक प्रकार के पाप किए। पाप करना एक चीज है, पर उसे ज्यादा बेहतर है समझना कि हमने पाप किया और सुधारना और फिर से गलती नहीं करना। ये नहीं कि हम आज पाप करें कल फिर प्रायश्चित करें फिर पाप करें। यही थी परीक्षित महाराज की चिंता। इस सत्य स्कंद के आरंभ में परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, उन्होंने कहा हम देखते हैं कि व्यक्ति पाप करते हैं फिर प्रायश्चित करते हैं फिर पाप करते हैं फिर प्रायश्चित करते हैं और फिर पाप करते हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया, एक हाथी तालाब में स्नान करता है, साफ हो जाता है, तालाब के बाहर आता है, जैसे बाहर आता है फिर से बैठता है मिट्टी में और फिर से शरीर गंदा हो जाता है। तो परीक्षण महाराज का प्रश्न यह था, इस प्रकार के प्रायश्चित की क्या का क्या लाभ। तो इस प्रश्न के उत्तर में शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि प्राचीन ग्रंथों में पुराणों में एक कथा प्राप्त होती है जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली प्रायश्चित क्या है। असली प्रायश्चित है जब हम ये निर्णय करें कि हमने ये गलती फिर से नहीं करनी, और वो भाव आपको इस श्लोक में प्राप्त हो रहा है। क्या कह रहे हैं आजमल? आजमल कह रहे हैं इस श्लोक में कि मैं अत्यंत पापी व्यक्ति हूं, क्योंकि वो पापी थे नहीं पर पापी बन गए। तो कैसे पापी बन गए? गलत संगत में आकर। वो तो अब विष्णु दूतों की कृपा से उनकी अज्ञानता दूर हुई है। जैसे हम एक प्रार्थना कहते हैं रोज बोलने से पहले, ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाक्य चक्षुर मिलितन येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारा जन्म हुआ था अज्ञानता में, पर गुरु साधु की कृपा से यह अज्ञानता दूर हुई है। तो इसी प्रकार विष्णु दूतों की कृपा से आजमल की अज्ञानता दूर हुई है। या विष्णु यामदूत तो आए थे आजमल को नरक में ले जाने के लिए, सजा भुगतने के लिए, पर आजमल ने जैसे ही गहराई के साथ नारायण शब्द को पुकारा, भगवान विष्णु के प्रतिनिधि वहां पहुंच गए जिन्होंने रोक दिया यमदूतों को आज मिल गई आत्मा को नरक में ले जाने से. तो आज हम स्वीकार कर रहे हैं कि वो पापी व्यक्ति पापी बन गए थे, किंतु अब मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है. यह अवसर प्राप्त हुआ है किसकी दया से? विष्णु दूतों की कृपा से. सो गुरु साधु की कृपा से हमारी अज्ञानता दूर होती है, और अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहें तो शास्त्रों की शिक्षा, गुरु साधु की शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए. तो आज हम आगे क्या कह रहे हैं? अब मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है, अतएव मैं अपने मन प्राण तथा इंद्रियों से पूरी तरह मैं वश करके भक्ति में लगाना चाहता हूं. तो ये भाव हम सब में होना चाहिए. हम सब पाप का जीवन बिता रहे थे, है कि नहीं? कि आप में से कोई बिल्कुल शुद्ध वातावरण में जन्म लिया था, सब पाप का जीवन बिता रहे थे. प्रभुपाद गुरु की कृपा से ये अज्ञानता दूर हुई है. अब हमें यह समझने में आ रहा है कि हमें शास्त्र के आधार पर जीवन को बचाना चाहिए. पर भगवान की सेवा में कैसे जुड़ोगे? प्राण के द्वारा, मन के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा. जब यमराज जी ने यमदूतों को भेजा आज मिल को नरक मिलाने के लिए, सजा भुगतने के लिए, कितने यमदूत भेजे उसने? तीन. क्योंकि हम तीन साधन हैं जिनके द्वारा आप भगवान की सेवा कर सकते हो, जिनके द्वारा भगवान को भूल सकते हो. ये तीन सुविधाएं क्या हैं? मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा और प्राण के द्वारा. तो अब आज मैंने कहा है आज के श्लोक में कि मैं अपने मन, जीवन, प्राण तथा इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करके भक्ति में लगाना चाहता हूं. तो यही संकल्प हम सबका होना चाहिए. जैसे कि यहां कहा जा रहा है तात्पर्य में, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं जो आज मिल का संकल्प है वो संकल्प हम सबका होना चाहिए अगर आप भक्ति के मार्ग में सफलता चाहते हो. और क्या है वो सब संकल्प? हमारे मन, प्राण तथा इंद्रियों का हम उनको वश में लाना. वश में लाने का अर्थ है उनको लगाना आध्यात्मिक कार्यों में. उदाहरण के लिए मन. मन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है हमारे आध्यात्मिक जीवन में. इसीलिए बार बार शास्त्रों में आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? भगवान कहते हैं मन मना भावा मद भक्तो मरिया जी मैं नमस्कुरु माम विवाशी सत्यम थे प्रतिजने प्रियोषि में. लगभग इस्कॉन के हर भक्त ने इस श्लोक को कंठस्थ किया हुआ है. हाँ, मन को बंधु बनाओ, मन द्वारा मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो. तो मन का हमें सदुपयोग करना चाहिए. गीता के छठे अध्याय का विषय है ध्यान योग, और ध्यान योग में भगवान कह रहे हैं किस प्रकार हमें मन पर विजय प्राप्त करना है और मन को बंधु बनाना है. जिस व्यक्ति ने मन को वश में कर लिया, वन कंट्रोल द माइंड, उसके लिए मन क्या है? बंधु है. जिसने मन को वश में नहीं किया उसके लिए मन क्या है? शत्रु है. और भगवान कहते हैं भगवद गीता में जिस व्यक्ति ने मन को वश में कर लिया वो व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा. चाहे आप कठिन स्थिति में हो, चाहे आपका अपमान हो जाए, अगर मन वश में है तो आप हर स्थिति में संतुष्ट रहोगे. और अगर मन वश में नहीं है तो सारे विश्व का धन भी आपको दो प्राप्त हो जाए आप अशांत रहोगे, इसलिए मन को वश में लाना बड़ा महत्वपूर्ण है। और मन को वश में लाओगे तो इंद्रियों को भी वश में ला सकोगे। भगवान गीता में कहते हैं यम यम वापी स्मरण भवाम, जहां आपका मन होगा मृत्यु के समय उसी प्रकार का ध्येय आपको प्राप्त होगा। अगर अंते नारायण स्मृति भी गीता में कहा गया है, इस प्रकार की योजना करो कि अंत में मृत्यु के समय नारायण का स्मरण कर पाओ। अजमेर का भाग्य था कि उन्होंने नारायण के शब्द को पुकारा इतनी गहराई से कि विष्णु दूत तुरंत वहां पहुंच गए। तो हमें इस प्रकार की योजना करनी चाहिए कि मृत्यु के समय भी हम नारायण का स्मरण कर सकें। पर कोई कह सकता है ठीक है मुझे दुनियादारी में जुड़ने दो, अभी बिना शंका के मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण करेंगे, ये संभव है? अगर आप कहो हम पढ़ेंगे नहीं सारा साल पर इम्तिहान में जरूर पास होंगे, ये संभव है? नहीं। तो जिस विषय का अभ्यास करोगे उस विषय पर आपका मन रहेगा मृत्यु के समय, यह है प्रकृति का नियम। तो इसलिए भगवान बार बार कहते हैं मन को वश में लाओ। अब आप कह सकते हो कि अगर अर्जुन जैसे महापुरुष भगवान के सनातन साथी ये कह सकते हैं कि मन बड़ा चंचल है, चंचल है मना कृष्णा, तो हमारी क्या स्थिति? एक तो हमें भूलना नहीं चाहिए अर्जुन भगवान के सनातन साथी हैं, वो कोई प्रश्न ही नहीं, वो किसी प्रकार से अज्ञानता के प्रभाव में आए, पर क्योंकि भगवान चाहते थे ये गीता का संदेश हमें प्राप्त हो, भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया। पर अर्जुन ने वैसे प्रश्न पूछे जो आप और हम पूछते हैं और जो समस्या आप और हम अनुभव करते हैं। हमारा क्या अनुभव है कि मन बड़ा चंचल ढीठ, कहते हैं ना कई बार गुस्से में तुम ढीठ हो तो मन भी बार बार सुनता है कभी सुधरता नहीं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा जब आप सुबह जागो 100 बार अपने मन को जूते को मारो, और जब सोने जाओ फिर 100 बार झाड़ू से मारो। दूसरे शब्द में अपने आप को याद दिलाओ हमने मन का नहीं सुनना, हमने मन का नहीं सुनना, हमने किसका सुनना है? फिर हम सुनेंगे शुद्ध भक्तों की शिक्षा और शुद्ध मन का संदेश। और शुद्ध मन का संदेश क्या है? व्यासदेव का संदेश। हम सुनेंगे व्यासदेव जी का संदेश जो कि हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो मन द्वारा हमारा प्रयास रहना चाहिए भगवान का स्मरण करने के लिए। और हमारे आचार्यों ने अनेक साधन दिए हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो वो रामानंद रॉय को मिले गोदावरी के तट पर। दक्षिण भारत की यात्रा शुरू करने से पहले सर्वम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को सूचना दे दी थी कि दक्षिण भारत में अब एक महान संत रामानंद रॉय जो कि राजपाल थे उन्हें मिलोगे। जब महाप्रभु उन्हें मिले तो महाप्रभु ने अनेक प्रश्न पूछे। भक्त की इच्छा होती है भगवान की महिमा को बढ़ाना, और भगवान की इच्छा होती है भक्त की महिमा को बढ़ाना। इसलिए हम देखते हैं कि अनेक स्थानों में भक्त प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं भक्तों को। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें एक प्रश्न था हमें किस विषय का चिंतन करना चाहिए? आपका भी यह प्रश्न है, हमें किस विषय का चिंतन करना चाहिए? तो रामनंद रॉय ने कहा, हमें भगवान के नामों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का स्मरण करना चाहिए। तो आप कहोगे, भगवान के नामों के विषय में क्या स्मरण करेंगे? ये स्मरण करो, किस प्रकार भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति डाली है, कहां उनके दिव्य नामों में। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा आश्रय में क्या कहा, हे भगवान, आप इतने दयालु हो, आपने अपनी पूरी शक्ति डाली है, कहां अपने दिव्य नामों में। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो भिन्नत्वं नाम नामिनः। भगवान के जो नाम है भगवान से अभिन्न है। तो फिर आप सुनो कि सोचो किस प्रकार भगवान अवतारित होते हैं उनके दिव्य नामों में। कली काले नामानुरूप कृष्ण होता। तो भगवान के नामों की महिमा का स्मरण करो, फिर सुन ये स्मरण करो कि भगवान के नामों में इतनी शक्ति है, ज्ञान से अज्ञान से जो भी नामों का उच्चारण करेगा उसका लाभ उठाएगा। तो भगवान के नामों के विषय में स्मरण करो, फिर आगे भगवान की लीलाओं का। भगवान की अनेक लीलाएं हैं और हमारे शास्त्र में कृष्ण लीला है, राधा लीला है, चैतन्य लीला है, प्रभुपाद लीला है। इन लीलाओं का स्मरण करो। केवल एक लीला नहीं है स्मरण करने के लिए, 50 लीलाएं हैं, है कि नहीं, इनका स्मरण करो। फिर भगवान के उपदेश का स्मरण करो। भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से हम सब जीवों को ये उपदेश दिया जा रहा है, इसका स्मरण करो। भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा है, हमारे कई भक्त हैं सारे विश्व में, खास करके विदेशों में, जो रोज एक श्लोक लिख लेते हैं कार्ड में, वो श्लोक फिर सारा दिन पढ़ते रहते हैं। इस प्रकार ज्ञान भी बढ़ता है और श्लोक भी कंठस्थ हो जाते हैं और मन बचता है गलत कामों का स्मरण करने से। अगर आप मन को ठीक स्थान में बिठाओगे तो गलत स्थानों में भटकने से बचेगा। प्रभुपाद जी एक सरल उदाहरण दे देते, अगर आपका ग्लास प्याला पानी से भरा हुआ है तो फिर आप दूध नहीं जोड़ सकते। तो उसी प्रकार अगर हम गीता का संदेश, शास्त्रों की लीला, भगवान का रूप, आप भगवान के रूप का दर्शन प्राप्त करते हो, इनका स्मरण करोगे तो मन बचेगा गलत विचारों का स्मरण करने से। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। और अगर हम ध्यान पूर्वक श्रवणम कीर्तनम करेंगे तो विष्णु स्मरणम भी संभव हो पाएगा। जब प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया तो उन्होंने क्या कहा, श्रवणम कीर्तनम और आगे विष्णु स्मरणम। उन्होंने ये नहीं कहा विष्णु स्मरणम श्रवणम कीर्तनम, उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम करोगे तो विष्णु स्मरणम भी हो पाएगा। फिर भगवान की इच्छाओं का स्मरण करो। जैसे प्रहलाद महाराज ये सोचते रहते थे भगवान की क्या इच्छा है, और प्रहलाद महाराज ये सोचते थे भगवान की क्या इच्छा है और किस प्रकार जीवों का उद्धार किया जाए, ये भी सोचिए। जैसे वैष्णव जो हैं वो परा दुखा दुखी हैं, दूसरे को दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाते हैं। तो जो वैष्णव भक्त देखता है यहां कोई दुख व्यक्ति दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहा है तो वो अत्यंत दुखी होता है। यही भाव प्रहलाद महाराज ने प्रकट किया, Prabhu in the back, they're translating in English. Why don't you go in the back? They're translating in English in the back. So Prahlad Maharaj ka kya tha bhav? Prahlad Maharaj ne kaha, jag mein dekhta ho, kis prakar vyakti, dukh ki sthiti ko badal rahe hain, prayas kare sukhi sthiti banane ke liye. Bhautik sansar mein kya hai? Klesh hi klesh. परसों हमने कल देख पढ़ा कनाडा अमेरिका में बहुत बड़ा तूफान आया, सब जगह बर्फ बर्फ है, घरों में बिजली भी नहीं है. तो चाहे आपके पास कितनी भी आधुनिक सुविधा हो, आप अपने आप को सात प्रकार के कष्टों से किसी स्थिति में बचा नहीं सकते, खास करके आदिदेविक आदिबोधिक आध्यात्मिक क्लेश. इसलिए भगवान कहते हैं निकलो यहां से. तो एक है साधन क्या, कि आप मन के द्वारा क्या करो, मन को कहां बिठाओ, आध्यात्मिक विश्व में बिठाओ. तो ये यहां आजमी ने तीन साधनों का वर्णन किया है, मन, जीवन या प्राण और इंद्रिया. तो जीवन या प्राण, ये ध्येय का उपयोग करो भगवान की सेवा में. भगवद गीता में भगवान मन की तपस्या का वर्णन करते हैं, इंद्रियों वाणी की तपस्या का वर्णन करते हैं और ध्येय की तपस्या. ध्येय के विषय में कहते हैं ध्येय का उपयोग करो किस लिए, भगवान की सेवा में. इंद्रियों का उपयोग करो किस लिए, भगवान की सेवा में. उदाहरण हमारे हम सबके समक्ष अमरेश महाराज का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है. अमरेश महाराज राजा थे, पर उन्होंने हमें उदाहरण दिया है किस प्रकार आप अपने मन और इंद्रियों का उपयोग कर सकते हो भगवान की सेवा में. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पिण निर्मलम ऋषिकेशन सेवना भक्ति उच्चते. भगवान के अनेक नाम हैं, लाखों नाम हैं, जिनमें एक नाम है ऋषिकेश. ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी. तो इंद्रियों के मालिक आप और हम नहीं हैं, देह का मालिक और आप और हम नहीं हैं. सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जी को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी पहुंच रहे थे. रास्ते में उन्हें छुप छुप कर, क्योंकि जा रहे थे जंगलों से गुजरना पड़ा, जिसके कारण उन्हें बहम बीमारी हो गई, पस निकल रही थी उनके शरीर से. तो उन्होंने सोचा अब मेरा शरीर तो बेकार का हो गया है, मैं जब जगन्नाथपुरी पहुंचूंगा जगन्नाथ जी के रथ के सामने आत्महत्या कर लूंगा. वो चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं, चैतन्य महाप्रभु समझ गए मन में क्या भाव है. महाप्रभु ने कहा सनातन से, ये देह तुम्हारा नहीं है, ये देह मेरा है, मैं इसका उपयोग करूंगा धर्म की स्थापना के लिए. तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए, ये ध्येय हमारा नहीं है, ये ध्येय किसका है, गुरु और भगवान का. इंद्रियां किसकी हैं, गुरु और भगवान की सेवा के लिए. तो अमरेश महाराज ने हमें क्या उदाहरण दिया, मन द्वारा उन्होंने सदा भगवान की लीलाओं का स्मरण किया, नेत्रों द्वारा उन्होंने भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन किया. पर आज भौतिकवादी व्यक्ति नेत्र का उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं, गंदी तस्वीरों को देखने के लिए, पोर्नोग्राफी को देखने के लिए, है ना. इंटरनेट में सबसे ज्यादा हिट्स पोर्नोग्राफी साइट्स को आती हैं, क्योंकि हमें आनंद आता है गंदी तस्वीरों को देखकर. तो नेत्रों का उपयोग करो भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन लेने के लिए। और आज इंटरनेट की कृपा से आप इस्कॉन के कई मंदिरों का दर्शन एक साथ प्राप्त कर सकते हो। एक मिनट कृष्णा बालराम का वृंदावन में, अगले मिनट राधा माधव, फिर राधा राज बिहारी, राधा पार्वती। मेरे ख्याल से कम 15-20 इस्कॉन के मंदिर हैं जिनकी मूर्तियों का दर्शन आप प्राप्त कर सकते हो। फिर जीभ द्वारा, जीभ का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है आपके आध्यात्मिक परिवर्तन में। जीभ द्वारा लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्रजल्प, प्रजल्प और बिना भेदभाव कुछ भी खाना। तो शास्त्र में कहा गया जीभ द्वारा हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नामों का उच्चारण। भगवान के नामों के उच्चारण के विषय में यह कहा जाता है कितना भी उच्चारण करो आप थकोगे नहीं, दिन रात भी उच्चारण करो थकोगे नहीं। तो जीव द्वारा क्या करना चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण। जीव द्वारा कृष्ण कथा करो और किससे बचो, प्रजल्पा। प्रजल्पा में हमारी बड़ी रुचि रहती है ना। अगर हमें मौका मिल जाए किसी के चरित्र का कोई नुक्स की चर्चा करने के लिए, या किसी की कुछ कमी हमें दिख जाए, तो हम बड़े आनंद में हो जाते हैं। पर प्रजल्पा से हमें बचना है। रूप गोस्वामी जी हमें शिक्षा देते हैं किस प्रकार भक्ति नष्ट होती है और किस प्रकार भक्ति बढ़ती है। और वो क्या कहते हैं, अत्याहरा प्रायश्चित प्रजल्पा नियमाग्रह जनसंघर्ष लोलियम च सद्वीर भक्ति विनशति। तो आप कहोगे हम करें क्या, हम प्रजल्पा नहीं करना चाहते, दूसरे व्यक्ति आ जाते हैं प्रजल्पा करने। हाँ, कई बार लोग ऐसे कहते हैं। तो दूसरे व्यक्ति जब आते हैं आपके पास प्रजल्पा करने, आप हाथ जोड़कर उन्हें कहो, प्रभु जी मैं आप जैसे एडवांस भक्त नहीं हूं, मेरे से प्रजल्पा मत करो, मुझे प्रजल्पा में मत जोड़ो। तो खुद ही चुप हो जाएगा, क्योंकि दीवारों के साथ कोई प्रजल्पा करेगा नहीं। प्रजल्पा करने के लिए उन्हें कोई साथी चाहिए, कोई सुनने का सुनने वाला ग्राहक चाहिए। पर हम सुनने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमारी भी रुचि इसी कार्य में है। पर तो अगर आप बचना चाहते हैं प्रजल्पा से, तो अगर कोई प्रजल्पा कर रहा है, वैष्णव निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, आप कहो हम इसके लिए तैयार नहीं है। फिर जीव का उपयोग करो क्या, भगवान का गुणगान करने के लिए। और जीव का उपयोग करो कृष्णा प्रसाद स्वीकार करने के लिए। अगर आप केवल कृष्णा प्रसाद खाओगे तो इसके द्वारा अशुद्ध मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी। तो जीव द्वारा कृष्णा प्रसाद खाओ। भगवान गीता में कहते हैं जो मुझे भोग लगाए बिना खाएं वो क्या खा रहे हैं, भीम पाप खा रहे। तो खाओ तो कृष्ण प्रसाद खाओ। फिर अमरीश महाराज ने नाक का उपयोग कैसे किया, नाक द्वारा सूंघा, क्या जो फूल भगवान को अर्पित होते हैं। फिर सिर के द्वारा क्या किया, सिर भगवान ने दिया है, इसको हमें भगवान के सामने पूरा झुकाना चाहिए। आज हमारी स्थिति यह है कि हम जब मंदिरों में भी जाते हैं पूरा सिर को नहीं झुकाते, खड़े खड़े ही प्रणाम कर देते हैं ना, हमको शर्म आती है पूरा सिर झुकाने में। तो भगवान के सामने सिर को बिल्कुल झुका देना चाहिए। पैरों द्वारा अमरीश महाराज ने क्या किया, चल के गए कहां, भगवान के मंदिर। हाथों से क्या किया, भगवान के मंदिर को साफ किया। चैतन्य चरितमृत में आप कथा पढ़ते हो किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उनके साथियों ने गुंडीचा मंदिर की सफाई की। इस लीला को गुंडीचा मर्जुनम की लीला कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु उनके साथी गए गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा नाम था महाराज नदमना की पत्नी का। तो गुनीचा मंदिर की उन्होंने पूरी सफाई की, छत को, दीवारों को, फर्श को, पानी के लोटे, पानी बाल्टी भरे पानी फेंक रहे थे। महाप्रभु स्वयं दिखा रहे थे कैसे रगड़ कर भगवान के मंदिर को साफ करना। और भक्ति सिद्धांत जी इस विषय में कहते हैं कि जब हम मंदिर को सफा करते हैं तो वो सफाई जो है हम असल में हम अपने हृदय को सफा कर रहे हैं। तो जब आपको ये सेवा दी जाए, जाओ झाड़ू दो, तो ये मत सोचना हमें भंगी की सेवा दे दी, हम कोई भंगी हैं क्या। अगर आपको कोई तुच्छ सेवा दी जाए, बर्तन मांजो, ये मत सोचो ये क्या, हम बर्तन मांजने आए हैं इसको में क्या, हमने तो कोई साहब की सेवा चाहिए। तो जितनी तुच्छ सेवा करोगे उतनी ज्यादा कृपा प्राप्त करोगे। एक आप लोग ने देखा होगा कि गुरुद्वारों में जो बड़े बड़े सिख भी हैं बड़ी तुच्छ सेवा करते हैं, शू स्टैंड, जूतों की देखभाल की, पानी पिलाने की इत्यादि। तो हमारे में विनम्रता का भाव होना चाहिए भगवान की सेवा को निभाते हुए। तो जीभ का उपयोग करो भगवान की सेवा, हाथों और पैरों का उपयोग करो भगवान के मंदिर चल के जाने के लिए, या मोटर में जाने के लिए, किसी साधन से जाने के लिए, पर आप भगवान के मंदिर को पहुंचने के लिए। हाथों का उपयोग करो किस लिए, भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए। तो यहां आजमेल कह रहे हैं अब साधुओं की कृपा से मैं समझ पाया हूं मैंने क्या गलती की है, और अब से मैं अपने प्राण, अपनी वाणी, आपके मन, अपने मन को दृढ़ धोकर भगवान के सेवा में ही लगाना है। तो ये जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, हमने कुछ समय पहले कहा था, एक संकल्प हम सबका होना चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये अवश्य है कि आप इंद्रियों को वश में लाओ। अगर हम ये सोचें कि इंद्रिय तृप्ति भी चाहिए हमें, भक्ति भी चाहिए, भगवान का धाम भी चाहिए, भौतिक जगत भी नहीं चाहिए, ये संभव है? नहीं। भगवान ने ये नहीं कहा जो करना है करो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, भगवान ने ऐसे कहा? भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मा परित्यजा मामेक, हम तो हम सर्व पाप मोक्ष में मास, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओगे। मेरी शरण में आने का अर्थ है मेरी शिक्षा का पालन करोगे, मेरे आदेश का पालन करोगे, फिर तुम मेरे धाम जाओगे। भगवान ने ये नहीं कहा मनमानी कार्य करो और मेरे धाम जरूर आओगे। भगवान ने स्पष्ट कहा जो मेरी शरण, मेरे आदेश का पालन करेगा, मेरी शिक्षा का पालन करेगा, मेरी शिक्षा के आधार पर जीवन को बिताएगा, वो व्यक्ति कहाँ आएगा? मेरे धाम आएगा। तो शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप भक्ति के मार्ग में सफलता चाहते हो, अगर आप विचलित नहीं होना चाहते हैं, तो हमें इस मार्ग में दृढ़ होकर विद डिटर्मिनेशन वी शुड ज्वाइन। रूपक गोस्वामी क्या कहते हैं, भक्ति में सफलता के लिए अनेक लक्षणों का आवश्यकता है, जिनमें एक है डिटर्मिनेशन, उत्साह, निश्चय, धैर्य, उत्साह तत्व कर्म प्रबोधन, उत्साह निश्चय, निश्चय मतलब दृढ़ होकर विद डिटर्मिनेशन। सो वी नीड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, यू कैन सक्सीड ऑन द स्पिरिचुअल पाथ विदाउट डिटर्मिनेशन। दृढ़ होकर प्रयास करोगे फिर भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करोगे। प्रभुपाद जी एक बड़ा सरल उदाहरण देते हैं गीता में। एक समय सागर ने एक पक्षी के सारे बच्चों को चुरा लिया। छोटी पक्षी थी, पक्षी ने कहा Please return my children. मैं बच्चों को वापस करो. पक्षी ने कहा, मेरे बच्चों को वापस कर दो. सागर ने हंस के कहा, भूल जाओ, बच्चों को वापस नहीं करूंगा. पक्षी ने कहा, नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगी, तुम्हें सुखा दूंगी. अभी पक्षी के मुंह में कितना जल आ सकता है. एक टीस्पून. तो सागर ने हंसकर कहा, ट्राई, प्रयास करो. तो पक्षी ने यह संभव कार्य आरंभ किया. असंभव, छोटा पक्षी सागर को सुखाना, पर वो दृढ़ थी, मुझे सागर को सुखाकर बच्चों को वापस लेना है. तो उसने प्रयास किया. फिर एक सूचना पहुंच गई कहां तक, गुरुदा तक. तो गुरुदा ने दया खाए अपने छोटे पक्षी पर. गुरुदा ने आकर सागर को धमकी दी, लुटा दो पक्षी बच्चे, नहीं तो मैं सुखाती हूं. तो इसी प्रकार हमारे में यह दृढ़ भाव होना चाहिए, यह संकल्प होना चाहिए, चाहे कुछ भी कठिन स्थिति हो, हमने भक्ति को नहीं छोड़ना. इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी त्यागना पड़े त्यागो, पर कृष्ण भक्ति को, कृष्ण भक्ति में सफलता के लिए जो प्रतिकूल कार्य है उसे त्यागना है तो त्यागो, किसी कीमत पर भी. तो ये है शास्त्रों का संदेश. तो आज के इस श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है. वो ये है कि आज मैंने ये निर्णय कर लिया कि अब मुझे अपना मन, अपनी प्राण और अपनी इंद्रियां, इनका उपयोग करना है भगवान की सेवा में. और ये संकल्प हम सबका होना चाहिए. और इस संकल्प में आप सफल हो गए अगर आप ध्यानपूर्वक हरि नाम का जाप करो. अगर हम ध्यानपूर्वक जाप करें तो फिर हमारे में शक्ति प्राप्त होगी कि दृढ़ होकर हम भगवान की सेवा में जुड़े रहें. अगर हमारा वहीं साधना कमजोर रहे, अगर हम ध्यान से जाप नहीं करें तो फिर कठिन होगा. ये अनुभव है कि जो भक्त बड़े उत्साह से सेवा करते हैं, अच्छी साधना रखते हैं और जाप करते हैं, वो बड़ी सरलता के साथ दृढ़ होकर भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं. ये है आर्जमिल का संदेश. और ये है संदेश हम सबके लिए. हम सबको इसका लाभ उठाना चाहे. और साधु संगत में सरल रहता है भक्ति में जुड़ने के लिए. आप सब जानते हो कि मैराथन के कुछ दिन और बच गए हैं. कितने दिन बच गए हैं? आप में से कितने भक्त मैराथन की सेवा में रोज जुड़े हुए हो? आप लोग तो जैसे आप जानते हो, प्रभुपाद जी की इच्छा थी लोग इन ग्रंथों को पढ़ें, क्योंकि इन ग्रंथों में दिव्य ज्ञान है और इस ज्ञान के द्वारा वो समझ पाएंगे क्या होना चाहिए जीवन का लक्ष्य. जैसे आजमिल विष्णुदूतों की कृपा से उनकी अज्ञानता दूर हो गई, उसी प्रकार इन ग्रंथों के माध्यम से लाखों लोगों की अज्ञानता दूर हुई है सारे विश्व में. मुझे कल रात को फोन आया था, एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर खजाकिस्तान अलमाटा से. इतनी सर्दी है वहां, बर्फ है हर जगह. तो वो लड़की सारा दिन जाती है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, और कल उसने 220 बड़ी किताबें बांटी सड़क में. तो अगर हम प्रयास करेंगे तो हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो आप भक्तों से निवेदन है और उत्साह के साथ ग्रंथों के वितरण की सेवा में जुड़ी रहे। प्रभुपाद जी कहते थे, अगर तुम मुझे संतुष्ट करना चाहते हो तो क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। आप सब उत्साह से जुड़िए और प्रयास करेंगे तो हर कार्य सफल संभव हो पाएगा। जैसे कि कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों के पार जा सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है। ये सब संभव है कैसे? महाप्रभु जी कृपा से। तो आप जुड़िए मैराथन में बड़े उत्साह के साथ। ओके, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? एक प्रश्न है फिर समाप्त करेंगे, देर हो रही है।
हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी आपने बताया जैसे डिटर्मिनेशन से हम करेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन डिटर्मिनेशन रहता है तो मतलब कुछ समय बाद डिटर्मिनेशन डाउन हो जाता है। और जैसे मतलब सुबह उठने का है तो उसमें सुबह उठ जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है 10 मिनट और सो ले, मतलब इसमें कैसे डिटर्मिनेशन लाएं कि तुरंत हम एंथुसियास्टिक रह सकें?
शास्त्र में हर समस्या का हल है, हर प्रश्न का उत्तर है। और नारद मुनि इस विषय में कहते हैं, कई बार हम इलाज करा रहे हैं, हम सोचते हैं हमारा इलाज हो गया, दवाई लेना बंद कर देते हैं तो फिर से बीमारी हो जाती है। तो एक ही उपाय है, अच्छी साधना रखो, ध्यान से जाप करो, कायदे शास्त्रों को पढ़ो, भक्तों की संगत में रहो। इस प्रकार का भाव रहेगा, संकल्प, तो सदा उत्साहित रहोगे। पर एक दिन अच्छी साधना रखोगे फिर 2 दिन ढीले हो जाओगे, फिर 2 दिन ठीक करोगे, फिर एक्सीडेंट की संभावना है। आप ध्यान से गाड़ी चला रहे हो पर 1 मिनट के लिए भी गाड़ी चलाते चलाते नींद आ जाए तो एक्सीडेंट की संभावना है ना। हमें सदा सावधान रहना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा।